हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मुझे डिवोर्स पेपर्स रेडी करवानी हैं। धृति की बात सुनकर माधुरी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो कुछ पल फटी आंखों से उसे देखती रही, जैसे अपनी आंखों देखे और कानों सुने पर विश्वास करने की कोशिश कर रही हो। पर धृति के चेहरे पर मौजूद गंभीर भावों ने जल्दी ही उसे ये एहसास करवा दिया कि ये कोई नाटक, भ्रम या मजाक नहीं, बल्कि आज की कड़वी हकीकत है। पर अब भी बहुत से सवाल थे उसके जहन में, और उसने हैरानी से उससे वो सवाल पूछ ही लिए। क्या कहा तुमने? मतलब मुझे सुनाई दिया कि तुमने डिवोर्स पेपर का जिक्र किया? मेरे कान बजने लगे हैं शायद। माधुरी को अब भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। धृति ने उसका रिएक्शन देखा तो भावहीन सी बोली, तुम्हारे कान नहीं बज रहे, मैंने वही कहा है। मुझे डिवोर्स पेपर्स बनवाने हैं, पर मैं किसी वकील को नहीं जानती जो मेरा ये काम कर सके। तुम्हारे अलावा किसी और पर मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए तुमसे कह रही हूँ, अगर कर सको तो मेरी इतनी सी मदद कर दो, मुझे किसी अच्छे से लॉयर से मिलवा दो ताकि मैं डिवोर्स पेपर्स रेडी करवा सकूँ। धृति, डिवोर्स पेपर? मतलब तुम सर से डिवोर्स लेना चाहती हो? माधुरी ने चौंकते हुए हैरानी से सवाल किया। अब उसे सामने खड़ी धृति अपनी दोस्त नहीं बल्कि मैडम नजर आ रही थी। उसके सवाल पर धृति ने बिना किसी भाव के हामी भर दी। इस रिश्ते को तो कभी जुड़ना ही नहीं चाहिए था, पर जुड़ गया। पर इसकी उम्र इतनी ही थी, अब उसे टूटना होगा। धृति, पर ऐसे अचानक डिवोर्स? माधुरी अब भी इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी। धृति के व्यवहार और बातों से इतना तो समझ गई थी कि हो न हो उसे सारी सच्चाई पता चल गई है। फिर भी वो धृति के इस फैसले की वजह नहीं समझ पा रही थी। उसने तो सोचा था कि धृति नाराज होगी, गुस्सा करेगी, पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो अर्णव से अलग होने का फैसला ले लेगी। इसलिए वो बुरी तरह शॉक्ड थी। उसके सवाल पर धृति के लबों पर दर्द भरी मुस्कान फैल गई। अचानक दुनिया में कुछ नहीं होता माधुरी, सब धीरे धीरे ही होता है। बस हमें पहले एहसास नहीं होता, और जब तक हमें एहसास होता है बहुत देर हो चुकी होती है, सब बिखर चुका होता है, और तब हम सोचते हैं कि ये अचानक क्या हो गया हमारे साथ, जबकि अचानक इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। कोई इंसान एकदम से टूटकर नहीं बिखरता, वो धीरे धीरे उस बिखराव की तरफ बढ़ता है। कोई यूं ही एकदम से हमारे दिल से नहीं उतरता, बल्कि बातों और हरकतों से आहत होकर वो धीरे धीरे हमसे दूर जाता जाता है, क्योंकि हम वही दर्द बार बार नहीं सहना चाहते। और दूर जाते जाते एक वक्त ऐसा आता है जब वो इंसान हमसे इतना दूर चला जाता है कि वापसी के सब रास्ते बंद हो जाते हैं, और हमें उस वक्त एहसास होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। कोई रिश्ता एकदम से दम नहीं तोड़ता, धीरे धीरे घुटता जाता है, और जब सब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो दम तोड़ देता है। वैसे ही ये रिश्ता, जिसका शुरू से कोई वजूद नहीं था, वो एकदम से नहीं टूट रहा, बल्कि धीरे धीरे इसके साथ मैं भी टूट कर बिखरी हूँ। अब मुझ में और दर्द सहने की हिम्मत नहीं रही। मैं नफ़रत से जुड़े इस रिश्ते के बोझ को और नहीं उठा सकती। थक गई हूँ मैं उनकी बेवजह की नफ़रत सहते सहते। अब उनकी नफ़रत मेरी सांसों को रोक रही है। पर अब तो सर का व्यवहार बहुत बदल गया है तुम्हारे प्रति। मुझे नहीं लगता कि अब वो नफ़रत करते हैं तुमसे। माधुरी ने अर्णव के पॉइंट को सामने रखने की कोशिश की, और धृति के चेहरे पर बेबसी और अफसोस के भाव उभर आए। हाँ, सही कहा तुमने, उनका व्यवहार अब पहले से बहुत बदल गया है मेरे प्रति। पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अब नफरत नहीं भी करते हैं तब भी मुझे खैरात में मिली उनकी परवाह स्वीकार्य नहीं। पहले उन्हें नफरत थी मुझसे, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते की बेड़ियों को मेरे पैरों में डालकर मुझे अपने साथ बांध कर रख लिया, और आज उन्हें गिल्ट है कि उन्होंने अनजाने में मेरे साथ गलत किया, इसलिए वो मुझे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते। पर अब मुझे ना तो उनकी नफरत मंजूर है, ना ही आत्मबोध और आत्मग्लानि में मिला उनका कंसर्न। मैं अब उनके साथ नहीं रह सकती। अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो ठीक है, वरना मैं खुद से लॉयर का पता लगा लूंगी। कुछ भी करूंगी, पर अब इस रिश्ते की बेड़ियों से खुद को आज़ाद करवा कर ही रहूंगी। माधुरी उसके दर्द की साथी रही थी। वो समझ रही थी उसके मन की पीर को। एहसास था उसे कि इस वक्त धृति पर क्या गुजर रही होगी और किस मनोस्थिति में है वो। शायद अभी उसे कुछ भी समझाने का कोई मतलब ही नहीं था। यही सोचते हुए माधुरी ने कुछ पल सोचने के बाद जवाब दिया, ठीक है, मैं एक तो लॉयर को जानती हूँ, उनसे बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। थैंक यू, पर ध्यान रहे कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ओके, माधुरी ने हामी भरी, फिर उसे ध्यान रखने का कहकर वहाँ से चली गई। धृति यहाँ से निकलकर सीधे अपने वर्क प्लेस में चली आई और काम करने लगी। दूसरी तरफ अर्णव काफी देर तक कमरे में बैठा उसके आने का इंतजार करता रहा, पर जब वो नहीं आया तो खुद नीचे चला आया। ड्राइंग रूम को खाली देखकर उसने शीला से धृति के बारे में सवाल किया, फिर उसके वर्क प्लेस की ओर बढ़ गया। पर यहाँ भी दरवाजा लॉक था और चिल्लाकर वो कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए वापस कमरे में चला गया। उसने सोचा कि शायद धृति को अभी वक्त चाहिए ताकि उसका दिमाग शांत हो सके, और यही सोचकर उसने बाद में बात करने का फैसला किया। धृति और अर्णव को वापस आए कुछ दिन बीत चुके थे, पर उनके बीच कोई बात नहीं हुई थी। अर्णव ने बात करने की कोशिश की, पर धृति हर बार उसकी बात सुनने से इनकार कर देती। जहाँ वो होता वहाँ से चली जाती। उसने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था। सारा सारा दिन वर्क प्लेस में अपना काम करती रहती, जिसके कारण अर्णव को कभी कभी लगता कि एक उम्मीद अब भी बाकी है। पर जिस तरह वो उसके सामने आने से बचती, बेरुखी से व्यवहार करती, उससे बात तक करने से इनकार करती, वर्क प्लेस में ही सोती, ये उसकी उम्मीदों का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया करते। अजीब बात तो ये थी कि वो आज भी अर्णव से जुड़े हर छोटे बड़े काम कर रही थी, पर अजीब सी चुप्पी अख्तियार कर ली थी उसने, जो अर्णव के लाख कोशिशों के बाद भी टूटने को तैयार नहीं थी। अर्णव को लगा कि शायद वक्त के साथ उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, पर कुछ खास फर्क नजर नहीं आया। एक तो बीती छुट्टियां, उस पर फैशन शो की तैयारी, काम बहुत बड़ा हुआ था और उसे ठीक से वक्त नहीं मिल पाता था। उस पर धृति और इस रिश्ते की चिंता, मानसिक तनाव से गुजर रहा था वो। धृति कुछ सुनने को तैयार नहीं थी और कहीं वो उसे छोड़कर न चली जाए, ये डर हर पल उसके दिलो दिमाग पर हावी होने लगा था। बिगड़ती हालत का एहसास कबीर और माधुरी को भी था। अपनी तरफ से उसने एक दो बार धृति को घुमा फिराकर बात समझाने की कोशिश भी की, पर वो अपने फैसले पर अड़ी खड़ी रही। कबीर का सारा ध्यान सृष्टि पर था, जो उसके साथ अपने सपनों का आशियाना बनाने, अपने हर अधूरे ख्वाबों को पूरा करने और ऐशो आराम की जिंदगी के सुनहरे सपने सजाने लगी थी। आज जब अर्णव ऑफिस से थका हारा घर लौटा तो धृति कहीं नजर नहीं आई। अपने कोट को उतारते हुए वो आगे बढ़ा, इतने में सर्वेंट पानी लेकर आ गया। जानता था कि धृति ने ही भेजा है, इसलिए चुपचाप एक घूंट पानी पिया और टाई ढीली करते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। कमरे में पहुंचा तो गेट पर से ही नज़र बेड पर चली गई, जहां आज भी हमेशा की तरह उसके कपड़े निकालकर रखे हुए थे। उन्हें देखकर अर्णव के लबों पर तंजिया मुस्कान सज गई, पर अगले ही पल उसकी नज़र कपड़ों के पास रखे कागजों पर पड़ी और उसकी वो मुस्कान भी सिमट गई। आंखें गहरी हो गईं और माथे पर बल पड़ गए। बिना एक पल गंवाए वो बेड के पास आया और झट से उन पेपर्स को उठा लिया, पर जैसे ही उसकी नज़र उसके पहले कागज़ पर पड़ी, जिस पर ऊपर ही बड़े बड़े अक्षरों में डिवोर्स शब्द लिखा था, उसका दिल धड़क से रह गया। टू बी कंटिन्यूड।